ज्ञानं यनुशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यनाम गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहका तरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयम्। तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं मे माम्। All are hearing. Sound is going on. भक्ति का एक ऐसा स्वभाव है कि जिनके हृदय में थोड़ी सी भी भक्ति प्रविष्ट हो जाती है वो दूसरे में कृष्ण के प्रति भक्ति का कहीं थोड़ा सा दूर से भी संबंध देखता है तो उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता है और अपने दुर्भाग्य की निंदा करता है। ये हमारा ऐसा नहीं है। Where there is a bhakti, a little bhakti, very low kind of bhakti is there. Bhakti makes that person or that devotee, that anyone, if he sees any connection with bhakti, any relation to Krishna, if he sees that anyone is chanting the name of Krishna, कोई कृष्ण का नाम ले रहा है, कृष्ण के लिए सर्वस्व त्याग कर दिया है, तो उसकी सब समय प्रशंसा कर अपने दुर्भाग्य को कोसता है कि हमारा ऐसा भक्ति नहीं हुआ। गोपियां प्रेम की अंतिम सीमा पर शिखर पर आरूढ़ हैं और एक प्रेम की प्रशंसा कर रही है। गोपीदास एस्टैब्लिश्ड इन द हाईएस्ट टॉप ऑफ प्रेम बट इवन देन दे आर ग्लोरीफाइंग इवन ए ग्रास इवन ए पीस ऑफ वुड पीस ऑफ पत्थर स्टोन ए
पार्टिकुलर
डस्ट ऑफ एनी डस्ट टच्ड बाय द फीट ऑफ कृष्णा। सो इफ एनीवन वांट्स टू हैव ए भक्ति एंड ही चैंटिंग एंड रिमेंबरिंग कृष्ण ने बट ही इज अब्यूजिंग अदर्स और इफ दैट डिवोटी सो कॉल्ड डिवोटी इज क्रिटिसाइजिंग ऑल अदर्स आर एनी वन हु इज चैंटिंग रिमेंबरिंग देन वी शुड understand that he has not a drop of bhakti, and he in less and less, but he will not have bhakti. If anyone abusing, quarreling, and not seeing the good qualities of any bhakta, then he should go to Karmanasa, and there he should drink, he should drown in that Karmanasa river, not in Ganges as Jamuna. उनको गंगा जमुना में नहीं, कर्मनाशा रिवर मगध प्रदेश में जरासंध के राज्य में बहती है, वहां जाकर के डूब जाना चाहिए. He should drown there. Then their karma can go away. So anyone, if they want a little bit of bhakti, they should never criticize anyone who is chanting, remembering, living in Vrindavan. He should, if an ant of Vrindavan, like spider, even they should do like this, then they are qualified to be in Vrindavan, otherwise not. And if they are criticizing any Vaishnavi, devotees, a separate hell will be
for them.
Will be. These hells are not sufficient for that person. They are not qualified to hear all these things. So, if there are any, यदि कोई ऐसा कर रहा है, तो उनको शिक्षा लेनी चाहिए इन गोपियों से. इतनी ऊंची ऊंची कथाएं सुनते हैं, वैष्णवों से लड़ते झगड़ते हैं, और हमारे पास में आकर के नालिश करेंगे. उनको कोर्ट में जाना चाहिए. वो सब हम लोग देखने सुनने के लिए समय बर्बाद करने, वी आर नॉट कम टू वेस्ट अवर टाइम इन ऑल दीज थिंग्स. सो गोपी आर टेलिंग, I am telling all these things and explaining all these things from so many days. The words of Srimati Radhika, the words of Gopi, the words of Sukadeva Goswami, the words of Srila Sanatana Goswami. What they are doing? आज मैंने व्याख्या की कल कि ये गोपियां प्रेम की शिखर पर आरूढ़ होकर के भी जिस किसी प्रकार से कृष्ण का कोई भी संबंध देखती हैं किसी में, वो कहते हैं कि इसी का जीवन सार्थक है, हम जन्म लेकर के उसी जन्म जाएं. यदि वो देखती हैं कि ये हवा बह करके आ रही है नंदगांव से और कृष्ण के अंगों से बह करके आ रही है, कहिए मैं हवा लेकर के जन्म लेती, विधाता हमें हवा बना दी. और श्रीमती और कृष्ण क्या सोचते हैं, जस्या कदापि वसनं चलोखे लोनस्थ धन्याति धन्य पवनेन कृताक्षमान जोगेन्द्र दुर्गम गतिर मधुसूदनों की नमस्तु वो दिशे. कृष्ण इज टेलिंग हिमसेल्फ, हु इज ही, वो कौन है? रसिक शेखर है, स्वयं स्वयं भगवान है, समस्त अवतारों के अवतारी हैं. और वो कह रहे हैं कि उस हवा को मैं कृतार्थ हो जाता हूं जो राधिका जी के नहीं राधिका जी के अंचल को स्पर्श कर आ रही है. और कृष्ण को लगी, कहते हैं कि धन्य आती धन्य पौनेन कृतार्थ मन, वो हवा धन्य है. आप उस धन्य को हवा धन्य को पा करके स्पर्श करके मेरा जीवन आज कृतार्थ हो गया. तो भक्तों को कैसा होना चाहिए ऐसा समझो. बोल दो थोड़ा सा, ये जो अंत धन्यास्म मूढ़ मतोऽपि हरण्येत। जानंदनंदनम उपात्त विचित्र वेशम आकर्ण रेणुरहितम सह कृष्ण सारा पूजांग ददौ विरचितांग प्रणयावलोक। धन्यास्म मूढ़ मतोऽपि हरण्येत। गोपियां कह रही हैं, महाभावती गोपियां कह रही हैं, यह वृंदावन की तो बात ही क्या, इसके पहले वृंदावन के वृंदावनम सखी भो विचनेति करति यद्देव कीर्ति सुत पदम जलप जलक्ष्मी। वृंदावन की मैं क्या कहूं, वृंदावन तो कृष्ण की विहार भूमि है। नंगे पांव चारों तरफ में डोलते हैं और वृंदावन उनकी सब प्रकार से सेवा करता है, उनके परिकरों की सेवा करता है, उनके सखाओं की, उनकी गैयों की, सबकी सेवा करता है, उनके लिए गोवर्धन की शिलाएं देता है जिस पर कृष्ण विराजमान होते हैं, उनके लिए सुंदर सुंदर कुंज देते हैं, उनके लिए वृंदावन भूमि खेलने के लिए, स्नान करने के लिए कुसुम सरोवर, मानस गंगा, पावन सोरी इत्यादि ये सब चीज देते हैं। प्रकृति को सजा करके वृंदावन रखते हैं। इसलिए वृंदावन की मैं महिमा क्या कहूं, बचपन से लेकर के किशोर अवस्था तक सब समय वृंदावन उनके, कृष्ण के और उनके संगी साथी जितने सबके आश्रय हैं। इसलिए वृंदावन की मैं क्या महिमा वर्णन करूं, वृंदावन की एक धूली कणा भी हम नहीं हो सकती हैं। कल बतलाया था ना, जहां कृष्ण चरण रखते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं, अक्रूर जी वहां पर चरण में लौटते हैं उस धूली में। वृंदावन की एक धूली कणा भी हम नहीं हो सकते। ओ वृंदावन में रहने वाली हिरणियों को तो देखो, धन्यास्म मूढ़ मतोऽपि हरण्येत। हिरण्यों को तो देखो, ये मूढ़ है। जानंदनम दनम उपात्त विचित्र वेशम, जो कृष्ण की रूप माधुरी को देखकर और आकर्ण वेणुरणितम कृष्ण के वेणुनाद लहरी को सुनकर अपने पतियों को साथ लेकर प्रणयालोकम के द्वारा कृष्ण को प्रणय पूर्वक देखकर अपनी आंखों से ही उनकी पूजा करती हैं, उनकी आरती उतारती हैं। देखो यही धन्य है मूढ़ होने पर भी। मूढ़ किस लिए, ये नहीं सोचती हैं कि कौन बंसी बजाई, बेणु बजाया, कोई बहलिया तो नहीं जो जाने से उसे मार डालेगा। अधिकांश में बहलिए ही हिरणियों का शिकार करने के लिए बंसी बजाते हैं और जाल में उसे फंसा कर उसे मारकर उसका मांस खाते हैं। हिरणियों को पता नहीं ये कौन बंसी बजा रहा है, किस लिए बजा रहा है। इसे जब कृष्ण वेणुवादन करते हैं तो ये मूढ़ होकर के भी नहीं जानती है कि कहां हम जा रही हैं, किसे खींची हुई आकर्षित हुई होकर के कृष्ण के समीप पहुंच जाती है। इतनी समीप में पहुंच जाती हैं कि कृष्ण उनका स्पर्श कर सकते हैं। पहुंच करके विचित्र वेश देखती हैं। कैसा वेश? बरहा पीड़म नट वर्गोकुल कर्णयो कर्णिका, ऐसा सुंदर वेश देकर के अपने को कृष्ण के ऊपर में न्योछावर कर देती हैं। ये कृष्ण कौन? केवल कृष्ण नहीं, नंदन नंदन है। भगवत्ता की रस की ये सीमा है। देख करके पागलनी सी हो जाती हैं, खड़ी होकर के क्या करती हैं? प्रणय से बड़े प्रीति पूर्वक कृष्ण के आंखों की तरफ में देखती हैं, आंखें में आंखें मिलाकर उनका रूप सौंदर्य देखती हैं, और कानों से कृष्ण के वेणु माधव वेणुनाद को श्रवण करती हैं। यहां पर कहते हैं सनातन गोस्वामी जी या टीकाकार, पूजांग दधौ, पूजांग दधु विरचितांग, विशेष रूप से रचितांग आचरितांग, विशेष रूप से पूजा करती हैं। पूजा ही नहीं करती, पूजा तो 16 प्रकार के उपकरण से, 12 प्रकार के उपकरणों से कोई पुजारी कृष्ण की पूजा करता है, किंतु वह पूजा पूर्ण भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। किंतु इन लोगों ने जो पूजा की, जिस प्रकार से, कोई भी उपकरण नहीं, न जल है, न चंदन है, न आरती है, न कुछ है, किंतु प्रणय के द्वारा जो कृष्ण की तरफ में देख रही हैं, ये ऐसी उनकी आराधना हुई, ऐसी पूजा हुई जिसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। अब कृष्ण ने किया क्या? दधौ, अब दधौ को कृष्ण की तरफ में भी लगाओ। कृष्ण उस पूजा को, किस पूजा को? जो प्रणय से कृष्ण की आरती उतार रही है, देख रही है, प्रणय की भीख मांग रही है, कृष्ण बड़े प्रसन्न होकर के उसकी पूजा को ग्रहण करते हैं और सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। हमारे इसमें लिखा है राय रामन संवाद में, सब प्रकार के उपकरणों के साथ में कृष्ण की जो पूजा होती है, उस पूजा में जरूरी नहीं है जो कृष्ण की तृप्ति हो। यदि पूजक के हृदय में प्रेम है, ऐसा अनुराग है, तो कृष्ण ग्रहण करते हैं। जैसे किसी को भूख और प्यास नहीं है, भोजन षडरस उसके सामने है, बड़ा सुस्वादु भोजन, किंतु उसको अच्छा नहीं लगेगा। प्यास नहीं है, सुशीतल जल उसके सामने देने से भी वो ग्रहण नहीं करेगा। यदि प्यास और भूख है तो अन्न और जल की, जैसा भी हो, एक सूखी रोटी में भी उसकी बड़ी तृप्ति होती है, बहुत ही रसा स्वाद उसको होता है। और भूख नहीं है तो मोहन भोग और मिठाई भी उसके लिए कुछ नहीं है। इसलिए भूख के ऊपर में और प्यास के ऊपर में भोजन और पान का रसास्वादन निर्भर करता है। भूख ही नहीं है क्या करेगा, प्यास नहीं है, पानी की क्या जरूरत है। इसलिए जिसके अंदर में कृष्ण की के प्रेम की भूख नहीं है, उसके समस्त उपकरणों के द्वारा दिया जाने वाली पूजा और अर्चन आराधना भी निष्फल है। अब इसमें देखा जाता है भूख किसमें है, जिसको भूख लगेगी उसको अच्छा लगेगा, तृप्ति होगी। अब देखो जिसे साधक में यदि भूख है तब तो उसको बहुत ही अच्छी लगेगी। किंतु यहां पर कहते हैं कि कृष्ण प्रसन्न होते हैं, कृष्ण को तृप्ति होती है, ये कैसे? इसलिए जसोदा जी को, कृष्ण को यदि खिलाने के लिए भूख होती है तो कृष्ण को भी भूख लगती है, और जसोदा जी को सेवा करने की भूख नहीं है तो कृष्ण को कभी भी भूख नहीं लग सकती। ये सुदामा विप्र द्वारका में जाते हैं, किंतु जब ही देखते हैं कि हमारी भाभी ने कुछ दिया होगा जरूर, और ये दे नहीं रही, अपने बगल में रखे हैं, तो कृष्ण को भूख लग गई। क्यों दे नहीं रही हैं, तभी उनको भूख लगी और उनके बगल से निकाल करके उसे खाया, कृष्ण को प्रीति हुई। क्यों? ले गए थे खिलाने के लिए, प्रेम तो है किंतु उपकरण नहीं, सूखा चिड़वा चावल। कृष्ण को रसस्त और अच्छी सुस्वादित चीज चाहिए, चीड़े में कुछ रस है, पानी यदि न दो उसमें तो निरस वस्तु, और वो भी कांजने कब का पुराना और टुकड़े। किंतु उसी को कृष्ण पा करके उनको बड़ी भूख लगी। क्यों लगी? उनको भूख नहीं लगती, किंतु भूख थी उनकी ब्राह्मण की पत्नी को, और ब्राह्मण को भूख थी प्रेम की, इसलिए उनको भूख लग गई, और उसी से वो तृप्त होकर के उनको बहुत कुछ दे दिया जिसकी कल्पना नहीं करते थे। इसलिए ये हिरणियों के लिए गुफियां कर रही हैं, आहा इनका जीवन सार्थक है। पूजांग दधौ विरचितां, विशेष रूप से इन्होंने पूजा की। वो पूजा क्या थी? प्रेम से अपने नैनों से कृष्ण की आरती उठा रही हैं, और उस समय में पूजा में घंटा घड़ियाल कुछ बजना चाहिए ना, तो कृष्ण स्वयं ही बांसुरी बजा रहे हैं, इतने तृप्त होकर के कर रहे हैं, इसलिए बड़ी आनंदित होकर के अपना सर्वस्व आंखों के माध्यम से देकर के उनकी आरती उतार रही है। ये सर्वस्व आराधना है, सर्वोच्च आराधना है। जरा बोल दीजिए, यहां पर एक लक्ष्य करने की बात है। प्रणयावलोक पूजांग दधौ, प्रणयावलोक, प्रणय मैंने क्या देखो तो प्रणय गोपियां राधा जी के लिए कहा गया, ये कृष्ण की प्रणय विकृति है। राधा कृष्ण प्रणय विकृति, ये प्रणय विकृति क्या? स्नेह प्रणय की विकृति नहीं है, मान प्रणय की विकृति नहीं है, और भी बहुत, चलो स्नेह मान प्रणय राग अनुराग महाभाव से आरंभ होता है प्रणय की विकृति। कितनी ऊंची चीज है ये, गोपियां देख रही हैं, अरे इनको प्रणय है, और इसलिए प्रणय के साथ में कृष्ण की इस दृष्टि से ही, प्रणय दृष्टि से ये आरती उतार रही हैं, उनकी आराधना कर रही हैं। हमें कहां ये, हमें प्रणय नहीं जो हम इस प्रकार से कर सके। कौन कहता है कि ये हिरणियां मूढ़ हैं? ये तात्पर्य धन्यास्म मूढ़ मतयो। अजी इन प्रणय वाली हिरणियों को यदि कोई मूढ़ कहता है तो हम मूढ़ होना नहीं चाहती हैं। मूढ़ होकर के भी यदि कोई कृष्ण को प्रणय की दृष्टि से देखे, उनकी सेवा करे प्रणय कुल, तो वो श्रेष्ठ है, ना कि उसे कुल में जन्म लेकर के, कृष्ण की भूमि में जन्म लेकर के, गोपी के घर में जन्म लेकर, उनके साथ में सब समय रह करके भी, खेल कूद करके भी, जिसके अंदर में कृष्ण के प्रति प्रणय नहीं हुआ, तो ये बुद्धिमान मनुष्य जाति में जन्म लेने का क्या फल वो व्यर्थ है, बल्कि ये मूढ़ ही रणियां ही धन्य है इनके अंदर में ऐसा प्रणय है। और उस प्रणय के साथ में कृष्ण की आरती उतार रही है और कृष्ण दधो, कृष्ण उसको ग्रहण स्वीकार कर रहे हैं उसको। क्या हम लोग इसके योग्य नहीं है, हमारे अंदर में तो तनिक भी कुछ नहीं है, हमारा ऐसा सौभाग्य नहीं जो कृष्ण के समीप में जा सकें, हमारा ऐसा दुर्भाग्य है। अरे देखो तो इनका कितना सौभाग्य, सह कृष्ण सारा इसके पतियों के साथ में ही आती हैं, पीछे पीछे पति चलते हैं। हिरणियों को पता नहीं है कि हमारे पति हमारे साथ में आ रहे हैं कि नहीं, उनको पता नहीं। पति देख रहे हैं कि ओहो इनका जन्म सार्थक है, ये कृष्ण को ही जीवन का सार बनाए हैं, इसलिए उनके पति ये समझते हैं कि हमारी पत्नियां कृष्ण के प्रति अनुरागवती हैं, उनका अनुराग है। इनका जीवन कितना सुंदर है, इनका जीवन सफल है, इनके पति होने के नाते हमारा भी परम सौभाग्य है जो ऐसे पत्नियों को हमने पाया जो कृष्ण में इतना अनुराग, इसलिए उनका अनुगमन कर रहे हैं, पीछे पीछे चल रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि साधु साधु तुम्हारा ही जीवन सार्थक है और तुम्हारे साथ में संबंध होने से हमारा जीवन भी सार्थक है, इसलिए हमको कृष्ण सार कहते हैं लोग। और सचमुच में उनका जीवन ऐसा है, इसलिए गोपियां कह रही हैं प्रणय के साथ में ये पूजा कर रही हैं और कृष्ण उसको ग्रहण कर रहे हैं। यदि कोई आदमी मूर्ख भी हो, मूर्ख से मूर्ख, किंतु कृष्ण के प्रति उसको अनुराग, अनुराग को छोड़ो श्रद्धा, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, कुछ भी हो उसका जीवन सार्थक है। और बुद्धिमान होकर के, संसार में सबसे बुद्धिमान होकर के यदि कृष्ण के चरण में श्रद्धा नहीं तो उसका जीवन बेकार का है, इस चीज को समझना चाहिए। नेक्स्ट गोपियां कह रही हैं हमारे पति कैसे हैं, हमारे पति ऐसे हैं ये कृष्ण सार नहीं है उनके लिए, बल्कि कृष्ण को देखते ही चिढ़ जाते हैं, उनका नाम गंध कहीं सुने तो उनको क्रोध हो जाता है। जैसे कंस, गोवर्धन, अभिमन्यु और भी जितनी ललिता सखी के पति जितने हैं, दुर्मद, अनंग मंजरी के पति का नाम है दुर्मद, ये सभी यदि कृष्ण का कहीं गंध भी आ गया, नाम का भी गंध आ गया, क्रोधित हो जाते हैं, सह नहीं सकते, झूठ मूठ का कलंक लगाते हैं। हमारे पति ऐसे नहीं है, जिनका पति ऐसा हो, कृष्ण भक्त हो, और जिनकी पत्नी कृष्ण भक्त हो, सचमुच में उनका जीवन बड़ा ही धन्य है। लो करें या बंद कीजिए। जंगल में वृंदावन में चर रही थी, घास चर रही थी, और उनके बच्चे उनके साथ में फुदक रहे, उनको लाड प्यार कर रही थी, किंतु जैसे ही आकर्ण वेणु रणितम, कृष्ण के वेणुनाद को श्रवण किया है हिरणियों ने, बच्चों का स्नेह करना भूल गई, घास चरना जो खाना है ये भी भूल गई, देह दायिक सब कुछ भूल गई। कृष्ण की भक्ति ही ऐसी है जिसमें होती है ऐसे करा दे, देह दायिक सब कुछ भूल जाए। गोपियां इसकी चरम सीमा है, कृष्ण ने स्वयं उनकी प्रशंसा की है। उद्धव जी से कहा था गोपियां देहदायक सब कुछ हमारे लिए भूल जाती हैं, केवल इसीलिए जीवित हैं कि कल मैं वृंदावन में लौट करके आऊंगा, इसीलिए बोलो नहीं। गीता में मनमना भाव इत्यादि जो दिखलाया गया है केवल गोपियों में ही सार्थक है और कहीं विश्व में नहीं देख सकते। गोपियां देख रही हैं भाव नेत्र से, देखो तो ये चर रही थी। खाना बहुत जरूरी है, आदमी लाख काम छोड़ करके खाएगा और अपने बच्चों को भी स्नेह करेगा। दिन भर आदमी परिश्रम करता है, शाम को आकर के खा करके अपने बच्चों के साथ चिड़ियां भूल गई, जो ही कान में आवाज आई पंछी की और भूल गई, बच्चों को भी भूल गई। बच्चे के तरफ में देखा नहीं, पति के तरफ में देखा नहीं, घात खाना भी, बल्कि जो घात उनके मुख में थी बस मुख में ही रह गई, कान खड़े करके कृष्ण के समीप। भक्ति इसको कहते हैं। साधन भक्ति में भी कृष्ण की कथा सुनकर ऐसा ही होता है, होना चाहिए। तव कथामृतम सप्त जीवनम कब्धिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमद आततम भूमि प्रणंती के सूर्य। कृष्ण की कथा ही ऐसी है, यदि कृष्ण की कथा सुनकर कृष्ण की कुछ भक्ति कर यदि हमारे हृदय में ऐसी भावना नहीं आई कि संसार का सब कुछ छोड़, कृष्णार्थे अखिल भोग त्याग यदि भावना नहीं आई, क्या भजन अभी कर। और कृष्ण के लिए, कृष्ण की प्रीति लिए सब कुछ करें, जो कुछ भी क्रिया होगी कृष्णार्थे अखिल क्रिया, अखिल क्रिया चेष्टा, अखिल चेष्टाएं कृष्ण की सेवा के लिए। फिर संसार में उसकी कहीं भी दृष्टि नहीं जाएगी। इसलिए गोपियां सावधान कर रही हैं कि देखो यदि घर में स्त्री पुत्र परिवार के साथ में रंग पूर्वक यदि संसार में उपभोग करना चाहता है तो खबरदार उन लोगों के पल्ले मत पड़ना जो बगल में पोथी दबाए हुए बिना पैसे का हरि कथा वितरण किया करते, खबरदार उनकी बात मत सुनना, नहीं तो तुम्हारा संसार नष्ट हो जाए। इसलिए ये गोपियां ये देख रही हैं कि अपने बच्चों को भी प्यार करना छोड़ दिया, घास खाना उसने छोड़ दिया और छोड़ करके कृष्ण के समीप आकर प्रणय पूर्वक उनको देखने लगी। हमारा ऐसा नहीं, उन हिरणियों को लोक लज्जा कुल का भय कुछ नहीं रहा, पागल नहीं हो गई। गोपियां कहती हम तो पागल नहीं हुई, हम तो अपने ससुर सास से डरकर, अपने पतियों के दम से, लोक लज्जा के डर से कृष्ण के समीप जाकर के खड़ी होकर के प्रणय पूर्वक उनको देख सकती हैं, उनकी पूजा कर सकती हैं। ये हिरणियां ही यथार्थ में किसी भी लोक लज्जा की कोई परवाह नहीं, पति क्या कर रहा है उसके लिए भी परवाह नहीं कर रही, पति छोड़ भी दे तो कोई भी बात, और उसका पति अपने को सौभाग्य मानता है कि ऐसी हमारी पत्नी है। क्योंकि हम पति से हमारे पति हमारे विमुख और हम ऐसे अभी धैर्य नहीं छोड़ सकती, लोक लज्जा नहीं छोड़ सकती है, इसलिए यदि हम मर करके आए श्रेणी बन करके आए तो हमारा जीवन सार्थक होगा। इस जन्म में हमारे लिए संभव पर नहीं है, गोपी जन्म में संभव पर नहीं, कभी मूढ़ हरिणी इत्यादि के रूप में भी हमारा जन्म हो जाए, जिस किस प्रकार से यदि कृष्ण से हमारा संबंध, हम अपने जीवन को समझेंगी, अपनी आंखों को भी साफ करेंगे। गोस्वामी जी दो शब्द का एक अर्थ और निकाल रहे हैं, वह क्या है, हिरणिया प्रणय व लोकई नंद नंदनम दधौ। वो क्या प्रेम में ऐसी पगी हुई है कि पूरे वाक्य को नहीं कह रहे, अपने प्रणय और लोक से कृष्ण को कर दिया, क्या कर दिया ये कहना भूल गई, क्या कर दिया वशीभूत कर दिया। सनातन गोस्वामी में जोड़ रहे हैं दधौ अर्थात वशीभूत उनको कर दिया। कैसे वशीभूत कर दिया, कैसे समझ रहे हो जो वशीभूत कर दिया, कृष्ण उनकी तरफ में देखने लगते हैं, जब वो प्रणय लोक से उनके तरफ में देखते हैं तो कृष्ण की देखते आओ बड़े प्यार से हमारे तरफ में, कृष्ण का चित्त द्रवित हो जाता है और इसलिए उनकी पूजा को दधौ इन्होंने स्वीकार कर लिया और उनके प्रेम के वशीभूत हो गए। कृष्ण ऐसे उदार है। और यदि हम भी जाएं तो हमको अस्वीकार कर देंगे? अरे परम उदार है, हमें ग्रहण कर देंगे, कभी भी हमें निराश नहीं कर सकते। किंतु हमारा जीवन व्यर्थ है क्योंकि हम ऐसे जा ही नहीं सकते, हमारे लिए ऐसा जाना असंभव। इन सब के द्वारा शिक्षा क्या, साधकों के लिए क्या शिक्षा मिलती है? यदि भजन करते हुए भी संसारिक वस्तुओं के प्रति किसी का मोह ममता है, कृष्ण के प्रति वो प्रणय प्रीति नहीं हुई, तो साधन भजन में बहुत अधिक है। ये श्रेणियां सब कुछ भूल जाती है, कृष्ण का स्मरण चिंतन कीर्तन करती हैं, उसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं। साधक को भी ऐसा होना होगा, तब कृष्ण मिलेंगे। ऐसे नहीं मिलेंगे, ये इधर भी संसार में भी है हमारा चित्त, उधर भी है, अब तो कृष्ण नहीं। इसलिए हम लोगों को भी वैसा होना होगा, तब कृष्ण हमारे प्रेम से वशीभूत हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। सचमुच में ये गोपियां देख रही हैं कि इनका उनके प्रति प्रणय है या उनमें है कुछ। मैं समझता हूं गोपियां बहुत अधिक देख रही हैं, उनमें उतना नहीं होने पर भी जरूर है, नहीं तो वेणुनाथ से आकर्षित होकर के सब कुछ को छोड़ करके पागलनी होकर के कृष्ण की तरफ में देख रही है, ये संभव है। इसे सचमुच में वो धन्य है, उनका जीवन धन्य है। और हम लोगों का जब गोपियां कह रही है कि हमारा जीवन धन्य नहीं, हम परवश हैं, हम जा नहीं सकती, हम बंधन में, संसार के बंधनों में जकड़ी हुई हैं, हम नहीं जा सकते। और हम लोग संसार को छोड़ करके आए हैं, किसी का पराधीन भी नहीं है, किंतु स्वयं विषयों में जा रहे हैं, ये बड़े परिताप और दुख की बात है। जरा विचार करके देखो, बड़े भाग्य से मनुष्य जन्म पाया, संसार को छोड़ दिया, सब नाते फाते सब छोड़ दिया, अपना धन छोड़ दिया, घर का सब कुछ, और फिर उसी यदि उसी के लिए हम ममता में जाते हैं, धन को संग्रह करने में चित्त जाता है, और वैसे ऐसे विलास की तरफों में हमारा चित्त जाता है, फिर किसी स्त्री या पुरुष के प्रति हमारा मन जाता है और कृष्ण का भजन करने का स्वांग दिखलाते हैं, तो हमारे लिए धिक्कार है। इसलिए चित्त को ऐसा रखना चाहिए जिसे सब समय कृष्ण का ही चिंतन, उनके भक्तों का चिंतन, उनका स्मरण और किसी बात का भी कोई भी तनिक भी इधर उधर चिंतन नहीं जाए, तब तो भजन में हम कुछ अग्रसर हो, और नहीं तो अनर्थ में डूब करके भक्ति से जो है वो भी वंचित होकर के न जाने कहाँ रसा कर। आज यही कह करके अपना वक्तव्य मैं समाप्त।